पृष्ठ संख्या 390 अध्याय 25। अध्याय शीर्षक है प्रकृतिवादी ईश्वर नेचुरलिस्टिक गॉड। अब शीर्षक है भूमिका। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तुतः उसके अस्तित्व के लिए प्राकृतिक परिवेश अनिवार्य है। इसलिए प्रकृति को सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। प्रकृति देवो भव की धारणा सर्वत्र व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी से मानी जाती है। वह आदि कारण है। प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। ऐसा एक ईश्वरवादी स्वीकार करते हैं। आदिमकालीन धर्म में ईश्वर का स्वरूप प्राकृतिक शक्तियों के रूप में प्रकट होता है। माना जाता है कि सूर्य, वायु, पृथ्वी, नदी, वरुण, पर्वत, चंद्रमा, ऋतु, वृक्ष, अग्नि आदि केवल प्रकृति को व्यवस्थित करने वाले मौलिक कारण मात्र नहीं हैं, बल्कि सृष्टि पालक भी हैं। ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। इनकी आराधना मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। जिन प्राकृतिक शक्तियों या प्राकृतिक देवों की पूजा आदिकाल से होती आ रही है, उनमें मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता रहा है। वे दिव्य शक्तियाँ देवताओं के रूप में विभिन्न नामों से अभिहित की जाने लगीं। वे शक्तियाँ जीवन के विभिन्न पक्षों में देवताओं के रूप में अधिष्ठित की जाने लगीं और उनको एक एक विभाग का अधिष्ठाता माना गया। उदाहरण के लिए भारत में अग्नि को देवता के रूप में वर्णित किया गया है। पर्शियन में अहूरा प्रकाश का देवता, मिस्र या इजिप्ट में रा सूर्य देवता, ग्रीक में जियस तथा लैटिन में जुपिटर स्वर्ग का देवता, जर्मन में ओडिन व भारत में इंद्र वर्षा के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यद्यपि इन देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का अधिष्ठाता माना गया, फिर भी कुछ ऐसे देवताओं के नाम आते हैं जो राष्ट्रीय देवता माने गए और उनका मानवीयकरण हुआ। इनके विशिष्ट नाम रखे गए हैं जो धर्म में उपासना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इजिप्ट में ओरिसिस, ग्रीक में अपोलो, लैटिन में मार्स आदि। अगला शीर्षक है प्रकृतिवादी ईश्वर की धारणा। प्रकृतिवादी ईश्वर की धारणा प्रकृति में देवत्व को स्वीकार करने, उसकी सत्ता को सृष्टि का कारण मानने और सृजनकर्ता व पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करने की दार्शनिक अभिव्यक्ति है। इस धारणा के अनुसार प्रकृति का विराट सुंदर व वैभवशाली स्वरूप उसमें देवत्व का अनुमान कराता रहा है। मानव आकाश, जल, भूमि, सूर्य आदि सभी में उसकी सत्ता को महसूस करता है। श्वेताश्वतरो उपनिषद में ब्रह्म को पशु, पक्षी, कृमि सभी कुछ बताया गया है। यो देवो अग्नौ, यो अप्सु, यो विश्वम भिवनाविवेश, यवोषधिषु, यो वनस्पतिषु, तस्मयी देवाय नमो नमः के माध्यम से प्रकृतिवादी देवों को सर्वत्र अवस्थित माना गया है। प्रकृतिवादी ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, विश्व का आदि से अंत तक संचालन करता है। पृष्ठ संख्या 391। पाश्चात्य एकेश्वरवादी विचारक स्पिनोजा की दृष्टि से ईश्वर ही प्रकृति है और प्रकृति ही ईश्वर है। इस तरह ईश्वर व प्रकृति एक ही सत्ता के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। भारतीय उपनिषदों में इस प्रकार के कथन मिलते हैं जिसमें अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि उसी सत्ता के अंग हैं। संक्षेप में प्रकृतिवादी ईश्वर सृष्टि को नियमित, नियंत्रित और संचालित करने की असीम सत्ता का नाम है। यह सृष्टिपालक और विनाशक दोनों है। सृष्टि में कौन की घटना कब घटित होनी है इसका निर्धारण प्रकृतिवादी ईश्वर ही करता है। प्रकृतिवादी ईश्वर प्राकृतिक धर्म से जुड़ा है और प्राकृतिक धर्म प्रकृति से। कुछ रहस्यवादी लेखकों के अनुसार प्रकृति आध्यात्मिक सत्यता का प्रतीक है, ईश्वर का जीवित अलंकरण और विवरण है। इसी से मानव प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। प्रकृति के प्रति देवत्व और रहस्य का भाव आदिम मानव चेतना का मुख्य अंग था और आज भी है, ऐसा माना जाता है। इसी कारण मानव प्राकृतिक शक्तियों की पूजा अर्चना करने में विश्वास करता है। इस धर्म में प्रकृति की प्रत्येक वस्तुएं मानव की आराध्य शक्तियां बन जाती हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सभी मानव द्वारा पूजे जाते हैं। मानव के लिए प्रकृति की ये ही वस्तुएं ईश्वर हैं और उनके आराध्य हैं। मानव ने इन शक्तियों को ही सृष्टि का आदि कारण माना है। इतिहास साक्षी है कि सृष्टि में जीवन का प्रारंभ पृथ्वी, जल व अन्य प्राकृतिक शक्तियों से ही हुआ है। इसी कारण पृथ्वी को शाक और अन्न की देवी के रूप में, सूर्य को ऊर्जा व प्राणदाता के रूप में पूजा जाता है, गाय को अमृत दाता और जल को चेतन दाता के रूप में पूजा जाता है। भारतीय दर्शन में इस तरह के कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें प्रकृति की दैवी शक्ति के रूप में पूजा जाता रहा है। सारांशतः प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा अर्चना अथवा आराधना ही प्राकृतिक धर्म है और प्राकृतिक धर्म में प्रकृति नामक जिस सत्ता की कल्पना की जाती है उसे प्राकृतिक ईश्वर कहा जाता है। इस दृष्टि से प्रकृति, प्राकृतिक धर्म और प्रकृतिवादी ईश्वर तीनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। अगला शीर्षक है प्रकृतिवादी ईश्वर की विशेषताएं। इसमें पहला बिंदु है प्राकृतिक ईश्वर सृष्टि का व्यवस्थापक और संचालक है। वैदिक काल में इस दृष्टि से ऋत की विशेष महत्ता है। ऋत को सार्वभौम नियम के रूप में माना जाता है। संसार जिस व्यवस्थित तरीके से चल रहा है उसका कारण ऋत ही है। ऋत का शब्दार्थ वस्तुओं की कार्य विधि। ऋत से तात्पर्य साधारणतः सब प्रकार के नियमों से है और न्याय के सर्वव्यापी भाव का भी द्योतक है। इस विश्व में प्रत्येक पदार्थ में जो व्यवस्था पाई जाती है वह ऋत के ही कारण है। यही वह नियम है जिसे प्लेटो व्यापक नियमों के नाम से पुकारता है। स्पष्ट है कि समस्त विश्व ब्रह्मांड ऋत पर आश्रित है और इसी यारित के अंदर रहकर गत करता है। सारांश में वह नियम जिसका अभिरक्षक वरुण है ऋत कहलाता है। वरुण प्रकृतिवादी ईश्वर के रूप में संसार को व्यवस्थित व नियमित करने वाला देवता है। प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, महामारी आदि की व्याख्या अंधविश्वास या जादू से नहीं होती, बल्कि प्रकृतिवादी ईश्वर कार्य कारण नियम के आधार पर उसे घटित करता है। पृष्ठ संख्या 392। चीन में ताओ सिद्धांत की व्याख्या लाओत्स ने ऋत के ही समान की है। उनके अनुसार ताओ सृष्टि में व्याप्त एक विशेष व्यवस्था का नाम है। बेबीलोनिया में भी ताओ और ऋत के समान सृष्टि की एक व्यवस्था स्वीकार की गई है, जिसका संचालक व नियंत्रक प्रकृतिवादी ईश्वर ही माना गया है। अब बिंदु दूसरा है, प्रकृतिवादी ईश्वर शक्ति संपन्न है। इसी शक्ति को ही सृष्टि का आधार माना जाता है। संसार की व्यवस्था व नियमितता को इसी शक्ति के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। बिंदु तीसरा है, प्रकृतिवादी ईश्वर प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। जिन प्राकृतिकवादी शक्तियों की पूजा पहले होती थी, उनमें मानवीय गुणों का आरोपण किया गया और वे दिव्य शक्तियां देवताओं के रूप में विभिन्न नामों से अभिहित की जाने लगी। उदाहरण के लिए भारत में इंद्र वर्षा के देवता, वरुण आकाश का देवता, इजिप्ट में रा सूर्य का देवता, लैटिन में जुपिटर स्वर्ग का देवता आदि को देखा जा सकता है। बिंदु चौथा है, प्रकृतिवादी ईश्वर का संबंध किसी वर्ग विशेष से नहीं है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारा, वरुण, पृथ्वी, पर्वत आदि पर किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष का आधिपत्य नहीं है। प्रकृतिवादी ईश्वर सामान्य जन के आराध्य हैं। यह अवश्य है कि संसार में प्राकृतिक ईश्वर का नामकरण एक सा नहीं है। भारत में सूर्य की पूजा और इजिप्ट में रा की पूजा की समान अवधारणा है। अतः सृष्टि में प्रकृतिवादी देवता सर्वत्र समान है और सभी के आराध्य हैं। बिंदु पांचवा है, प्रकृतिवादी ईश्वर प्राकृतिक धर्म से जुड़े होने के कारण नैतिक गुणों से पूर्ण होता है। विभिन्न देवताओं में न्याय, पवित्रता, ऐश्वर्य, शुभ एवं करुणा आदि गुणों का आरोपण पुराणों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए विजय एवं ऐश्वर्य के गुण भारत के देवता इंद्र, लैटिन के मार्स और थोर के टीटोनिक में माने जाते हैं। न्याय के देवता वरुण, आशीर्ष तथा जीयस हैं और अहुर मज़्द शुभ तथा प्रकाश के देवता माने जाते हैं। इस तरह प्रकृतिवादी ईश्वर सृष्टि का व्यवस्थापक, शक्ति संपन्न, नैतिक, न्यायप्रिय, पवित्र व उदार चरित्र वाला व्यक्तित्व है। वह मानवीय जीवन का संरक्षक और जीवनदाता भी है। अब अगला शीर्षक है, भारतीय दर्शन में प्रकृतिवादी ईश्वर। भारतीय दर्शन में प्रकृतिवादी ईश्वर की धारणा का उद्भव आदिकाल से माना गया है। प्रकृति ही प्रकृतिवादी ईश्वर का प्रतिरूप है। इस कारण भारतीय दर्शन में प्रकृति को सृष्टि का मूल कारण कहा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी से मानी गई है। प्रकृति को निर्धारित करने वाले तत्व सूर्य, पृथ्वी, नदी, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, उषा, सोम आदि ही प्रकृतिवादी ईश्वर के रूप में सृष्टि का संरक्षण, संचालन व नियंत्रण करते हैं। प्रकृतिवादी ईश्वर के रूप में प्रकृति के इन तत्वों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। ऋग्वेद में सूर्य को सारे संसार का स्वामी या देवता कहा गया है। सूर्य देव संसार को प्रकाश देने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पूजा मनुष्य के मनस के लिए स्वाभाविक है। पृष्ठ संख्या 393। यह यूनानी धर्म का एक आवश्यक अंग है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में सूर्य पूजा को आदर्श बताया है। उसके मत में सूर्य धर्म का प्रतीक स्वरूप है। फारस देश में हमें सूर्य पूजा का विधान मिलता है। सूर्य जो संसार में प्रकाश और जीवन का कर्ता है, अप्राकृतिक शक्तियों से संपन्न है, वह सर्वद्रष्टा और जगत का पर्यवेक्षक है। वह मनुष्य को अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए जगाता है, अंधकार को दूर करता है और प्रकाश देता है। सूर्य जगत का रचयिता और शासनकर्ता भी है। सूर्य ही विष्णु रूप में सब लोगों को धारण करता है। विष्णु त्रिपाद देवता हैं जो पृथ्वी, धूलोक और अन्यान्य ऊंचे लोकों को, जो मरण धर्मा मनुष्यों के इंद्रिय गोचर हैं, आच्छादित करता है। वरुण को आकाश का देवता कहा गया है। उसका स्वरूप महान है। वह सारे संसार में अधिष्ठित है। वेदों में वरुण अत्यंत सदाचारी देवता माना गया है। वह समस्त विश्व का निरीक्षण करता है, दंड देता है। सूर्य उसके चक्षु हैं, आकाश उसके वस्त्र हैं और तूफान उसका निःश्वास है। नदियाँ उसी की आज्ञा से बहती हैं। उसी के नियम से धूलोक और पृथ्वी अलग अलग वर्तमान है। वही भौतिक और नैतिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। वही परम ईश्वर है। देवों का देव अपराधियों के लिए कठोर और पश्चाताप करने वाले के लिए दयालु है। वेदों में अग्नि को सृष्टि का आश्रयदाता माना जाता है। अग्नि देवता के भौतिक स्वरूप के बारे में यह कथ्य मिलता है कि उसकी दाढ़ी पिंगल रंग की है, तेज जबड़े हैं और जलते हुए दांत हैं। लकड़ी और घी उसका भोजन है। वह सूर्य के समान रात्रि के अंधकार को दूर करता है। इस कथन में अग्नि का मानवीकरण हुआ है। इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि प्राकृतिक ईश्वर के रूप में अग्नि जगत के सभी गोचर अगोचर पदार्थों में व्याप्त है। अर्थात वह जल में, पुरुषों में, पत्थरों में, यह अथर्ववेद से लिया गया है, पशुओं और औषधियों आदि में व्याप्त है। यह हमारे अशुभ कार्यों को दूर कर हमें सत्य मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। पर्जन्य या इंद्र आर्यों का आकाश का देवता था। आर्य लोगों के भारत में प्रवेश करने के पश्चात वह इंद्र बन गया। ऋग्वेद में इंद्र को मेघ व वर्षा का देवता कहा गया है। वह एक देवता के समान समस्त जगत पर शासन करता है। वह समस्त अस्थावर और जंगम जगत का जीवन प्राण है। यह ऋग्वेद में वर्णित है। प्रकृतिवादी देवता के रूप में इंद्र का विशेष महत्व है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसे या इंद्र को भारतीय जीसस की संज्ञा दी है। इंद्र वेदों का सबसे लोकप्रिय देवता है। उसकी उत्पत्ति जल और मेघ से है। वह वज्र धारण करता है एवं अंधकार पर विजय पाता है। वह हमें प्रकाश व जीवन देता है, शक्ति और ताजगी देता है। आकाश उसके आगे मस्तक झुकाता है और पृथ्वी उसके आने पर कांप उठती है। इंद्र सर्व विजयी देवता, उच्चतम दैवी गुणों से पूर्ण, पृथ्वी, नदियों, समुद्रों और पर्वतों पर भी शासन करता है। यह भी ऋग्वेद से है। पृष्ठ संख्या 394। इंद्र के साथ अनेक छोटे छोटे देवता अंतरिक्ष संबंधी अन्य प्रकार के चमत्कारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे वात या वायु, मरुदगण आदि भयंकर तूफान के देवता हैं, और रुद्र भयंकर शब्द करने वाला। मरुदगण साधारणतः शक्तिपूर्ण और नाशक होते हैं, किंतु कभी कभी दयालु और परोपकारी भी सिद्ध होते हैं। वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक संसार पर वेग से प्रहार करते हैं अथवा वायु को शुद्ध करते हैं और वर्षा लाते हैं। ये भी ऋग्वेद से है। रुद्र युद्ध का देवता है। ऋग्वेद में रुद्र की बहुत गौण स्थिति है, जिसकी स्थिति केवल 3 सूक्तों में पाई जाती है। वह अपनी भुजाओं में वज्र धारण करता है और आकाश से बिजली के बाण छोड़ता है। बाद में वही कल्याणकारी शिव बन जाता है। सोम को स्फूर्ति का देवता माना गया है। अथर्व वेद में सोम को वनस्पतियों का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में इसे संपूर्ण संसार का अभिरक्षक माना गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में यह अमर जीवन दाता है, जिंदावस्था के हाओम के सदृश है और यूनान के डायोनिसस के समान है। मदिरा और द्राक्षा का देवता है। सोमरस को बुद्धि बढ़ाने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, कर्मठता, ज्ञान और विशिष्ट आनंद देने वाला आदि माना गया है। सोम के प्रयोग से मानस की अज्ञात गहराइयों में पहुँचने और भावातीत अवस्था में पहुँचने में सहायता मिलती है, जिससे आत्म साक्षात्कार के विभिन्न स्तरों में पहुँचना संभव था। देवताओं के साथ साथ कुछ देवियों का भी विकास हुआ है। उषा को संसार को प्रकाश देने वाला कहा गया है। सरस्वती विद्या की देवी है। अरण्य यानी जंगल की देवी है। अब शीर्षक है प्रकृतिवादी ईश्वर, एक विवेचन। अब तक के अध्ययन में हमने देखा कि प्रकृतिवादी ईश्वर जगत का मूल कारण है। वह सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में आराध्य है। उसकी उपस्थिति से ही प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। इसी कारण वेदों में देवताओं की शक्तियों को अस्थाई कहा गया है। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को ही देवता के रूप में प्रस्तुत किया है। वेदों में बहुत से प्रकृतिवादी ईश्वर की व्याख्या मिलती है, जिसके कारण वैदिक काल के लोगों के सामने यह प्रश्न उठता है कि किस देवता को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना की जाए। बहुत से देवता होने के कारण बहुदेववाद को स्वीकार किया जाए या सब मिलाकर किसी एक देवता को। इस संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है कि हम बहुदेववाद को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक चेतना इसके विरोध में आ जाती है। वेदों में एकेश्वरवाद की धारणा के समर्थन में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि धार्मिक चेतना की एक परब्रह्म के प्रति उपलक्षित मांग ने अपने को वेदों के एकेश्वरवाद अथवा एक सत्तावाद के रूप में अभिव्यक्त किया। पृष्ठ संख्या 395। वैदिक धर्म में एक समय में एक ही देवता को श्रेष्ठ मानकर पूजा होती थी। जब इंद्र की पूजा होती थी तब इंद्र को ही अन्य देवताओं से श्रेष्ठ और शक्तिशाली समझा जाता था। अन्य देवता महत्वहीन व गौण हो जाते थे। इस प्रकार जिस देवता की प्रशंसा वैदिक मंत्रों में की गई है प्रायः उसी को कर्ता, हर्ता, विधाता सब कुछ मान लिया जाता था। कभी इंद्र को, कभी अग्नि को, कभी वरुण को सर्वशक्तिमान ईश्वर समझकर स्तुति की गई है। अगला शीर्षक है एकेश्वरवाद या अनकेश्वरवाद। वैदिक धर्म में सभी देवता जिनकी परम सत्ता के रूप में पूजा होती थी एक ही श्रेणी में थे। यद्यपि कुछ समय के लिए उनमें किसी एक को सर्वोच्च स्थान दे दिया जाता था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि एक देवता को मानने का तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य देवताओं की सत्ता का निषेध किया जाता है। कभी कभी छोटा से छोटा देवता ऊंचा स्थान पा जाता है। कुछ समय के लिए प्रत्येक देवता अन्य सब देवताओं की समवेत प्रतिकृति के रूप में प्रकट होता है, किंतु मानव का ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का भाव जो धार्मिक जीवन का सत्य है तभी संभव हो सकता है जब एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन के इस कथन से वैदिक धर्मों में एकेश्वरवाद की पुष्टि होती है। ऋग्वेद में भी इस ओर संकेत करते हुए बहुत से सूक्त मिलते हैं जिनमें सभी देवताओं को एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न रूप या शक्ति कहा गया है। एकम सद्रुपा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही सत्ता है जिसे विद्वान विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। वैदिक धर्मों में वर्णित देवताओं की लंबी सूची को देखकर उसे अनकेश्वरवाद की संज्ञा दी जाती है, परंतु मैक्स मूलर ने इसे स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने एकेश्वरवाद के स्थान पर हीनोथिज्म जैसी शब्दावली प्रयुक्त की है। इस धारणा के अनुसार प्रत्येक देवता को क्रमशः पूज्य मानकर अंत में सबसे बड़े यहाँ तक कि एकमात्र ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। यही मैक्स मूलर का हीनोथिज्म है। अब अगला शीर्षक है अद्वैतवाद। वेदों में एकेश्वरवादी विचारधारा के साथ ही अद्वैतवाद का स्पष्ट प्रतिपादन मिलता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में ऋग्वेद में वर्णित रित के भाव के अंदर जो एकत्व भाव का अनुभव हुआ उसमें अद्वैतवाद का समर्थन होता है। यदि प्रकृति की नाना विधि और भिन्न भिन्न घटनाओं के कारण अनेक देवताओं की कल्पना की जाती है तो प्रकृति के अंदर जो एकत्व लक्षित हो रहा है उसके अनुसार ईश्वर के एकत्व को भी स्वीकार किया जाए। वहीं एकमात्र ईश्वर है जो सब पदार्थों में व्याप्त है। प्राकृतिक नियमों में विश्वास करना ही एक ईश्वर में श्रद्धा को उपजाता है। वरुण की उपासना से ही हम अद्वैतवाद के बिल्कुल निकट पहुँच जाते हैं। सदाचार संबंधी एवं आध्यात्मिक सभी गुण यथा न्याय, उपकार, साधुता और यहाँ तक कि करुणा भी उसी वरुण में सन्निहित बताए गए हैं। इस तरह वेदों में समस्त प्राकृतिक शक्तियों को एक मानकर उसकी सत्ता को स्वीकार कर अद्वैतवाद की पुष्टि की गई है। पृष्ठ संख्या 396। अद्वैतवाद में परम सत्ता केवल एक ही होती है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें अन्य सत्ताओं का निषेध किया जाता है, बल्कि इसमें सारी सत्ताएं एक परम सत्ता के रूप में दिखाई पड़ती हैं और जिसे स्वीकार करना पड़ता है। अब अगला शीर्षक है प्रकृतिवादी ईश्वर और धर्म। प्रायः जब हम धर्म की व्याख्या करते हैं तो उसका संबंध कर्मकांड अथवा पूजा अर्चना से होता है। हम विभिन्न प्रकृतिवादी देवों की आराधना इस उद्देश्य से करते हैं कि उनसे हमारा कल्याण हो, हम सभी ऐश्वर्य संपन्न हों और समस्त प्राणी सुरक्षित रहें। वैदिक धर्म में इस तरह की कई ऋचाएँ देखने को मिलती हैं जिसमें प्राणी अपने कल्याण के लिए प्रकृतिवादी ईश्वर की आराधना करता है। उदाहरण के लिए इंद्र से प्रार्थना की जाती है कि वर्षा करे और तूफान को दूर रखे। सूर्य से प्रार्थना की जाती है कि हल्की उष्णता प्रदान करे और झुलसाने वाली गर्मी को दूर रखे, जिससे दुर्भिक्ष या सूखा न पड़े। देवताओं की स्तुति धर्म के रूप में व्यवहार में देखने को मिलती है। लोग अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए सूर्य, इंद्र, उषा, अदिति, यम, वरुण, अग्नि, वृक्ष, नदी, जल आदि की पूजा करते हैं। ऋग्वेद में यज्ञ को प्राचीनतम धर्म माना गया है। यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्रकृतिवादी ईश्वर को प्रसन्न करता है और कल्याणकारी जीवन की मांग करता है। यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्रकृतिवादी ईश्वर से सुख और सुरक्षा, सहस्रों प्रकार की पुष्टि, वाक शक्ति व आत्मबल, बुद्धि व ज्ञान तथा स्वच्छ व प्रदूषण रहित स्थान प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि लोग वर्षा के लिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते हैं। प्राकृतिक धर्म में प्रकृतिवादी ईश्वर का मानवीयकरण करके व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करता है और अपने कल्याण के लिए उन्हें फल फूल, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण कर उन्हें प्रसन्न करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि मानवीकरण हो जाने पर प्रकृतिवादी ईश्वर भी देहधारी है। उनके हाथों और पांवों की कल्पना भी मनुष्यों की सी की गई है। उन्हें शारीरिक आकृति प्रदान की गई है। जिस प्रकार द्वंद मानवों में होता है, वैसा ही द्वंद उनके अंदर भी मिलता है। वे भी मानव के समान परस्पर युद्ध करते हैं, प्रीति भोज करते हैं, मध्य भी पीते हैं एवं नृत्य भी करते हैं। उनका भोजन भी वही है जो मनुष्यों को प्रिय है, अर्थात दूध और घी, अनाज आदि। मानव स्वभाव की दुर्बलताएं भी उनमें पाई जाती हैं और उन्हें चाटुकारिता से, सुगमता से प्रसन्न भी किया जा सकता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की अपेक्षा प्रचुर आहुति की आवश्यकता होती है। डॉक्टर राधा कृष्णन की इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृतिवादी ईश्वर, जिन्होंने मानवीय रूप धारण कर लिया है, जैसे इंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, बृहस्पति आदि को उसी तरह प्रसन्न किया जा सकता है जिस तरह किसी मानव को। व्यवहार में भी यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति ईश्वर को फल फूल, दूध, घी आदि अर्पित कर अपने कार्य की पूर्णता के लिए उन्हें प्रसन्न करता है। ईश्वर के प्रति यह कार्य भी धर्म के ही अंतर्गत आता है। धर्म में पूजा और प्रार्थना का प्रमुख स्थान है। प्रकृतिवादी ईश्वर के लिए पूजा और प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया गया है, किंतु इस पूजा को उपयोगितावादी दृष्टि से ही महत्वपूर्ण माना गया है। हम प्रकृतिवादी ईश्वर की पूजा भय के कारण करते हैं। पृष्ठ संख्या 397। हम डरते हैं कि यदि पूजा न की गई तो ईश्वर या देवता हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम देवताओं का आदर करते हैं क्योंकि हमें दैनिक जीवन में सहायता देते हैं। यही बात प्रार्थना में भी देखी जाती है। इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि वह वर्षा करे और साथ साथ यह भी याचना करते हैं कि वह तूफान को दूर रखे। सूर्य से प्रार्थना की जाती है कि वह हल्की उष्णता दे और यह कि झुलसाने वाली गर्मी को दूर रखे, जिससे सूखा या दुर्भिक्ष न पड़ने पाए। देवता भौतिक समृद्धि के भी उद्गम बनते हैं और सांसारिक पदार्थों के लिए प्रार्थनाएं प्रायः ही सामान्य रूप से पाई जाती है। चूंकि कर्मों और गुणों का विभाग भिन्न है, अतः हम खास खास देवताओं से खास खास पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। देवताओं को साधु वृत्त मानने की अपेक्षा अधिकतर शक्तिशाली के रूप में, सदाचारी होने की अपरेक्षा सामर्थ्यवान के रूप में माना गया है। प्रकृतिवादी ईश्वर या देवता की आराधना या धार्मिक वृत्ति के विषय में डॉक्टर राधा कृष्णन की निम्न आलोचनात्मक टिप्पणी उद्धरणीय है। इस प्रकार का धर्म मनुष्यों की नैतिकता संबंधी उच्च आकांक्षाओं के लिए संतोषप्रद नहीं हो सकता। धर्म में जितना महत्वपूर्ण स्थान पूजा और प्रार्थना का है, उतना ही महत्व यज्ञ का भी है। यज्ञ का भाव यह है कि मनुष्य ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। ईश्वर के प्रति प्रेम की गहराई इसी में निहित है कि उपासक अपने सर्वस्व और समाप्ति को ब्रह्म को अर्पित कर दें। यज्ञ में भावना को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका उदाहरण इस कथन में देखा जा सकता है। इंद्र के प्रति भावपूर्ण वाणी बोलो जो घी या मधु से अधिक मधुर है। वरुण ऐसा देवता है जो मनुष्य के आंतरिक भावों का पता लगाता है। कहा जाता है कि अग्नि भारत में मुख्य रूप से यज्ञों का देवता है। प्राचीन ग्रीस देश में भी यह इसी प्रकार से माना गया है। अब अगला शीर्षक है प्रकृतिवादी ईश्वर और नैतिकता। प्रकृतिवादी ईश्वर को जिस प्रकार धर्म के साथ देखा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर और नैतिकता को भी एक साथ देखा जाता है। ईश्वर या देवता रित अर्थात सदाचार संबंधी व्यवस्था को धारण करने वाले हैं। रित वह कानून है जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसका सभी जैसे कि ईश्वर देवता मनुष्य पालन करते हैं। रित सदाचार के मानदंड को प्रस्तुत करता है। कहा गया है कि जो रित अर्थात सत्य एवं व्यवस्थित मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सत्पुरुष हैं। व्यवस्थित आचरण को सत्य व्रत कहा जाता है। सूक्तों के अनुसार नैतिक जीवन के विशिष्ट सार तत्व ब्यौरेवार दिए गए हैं। देवताओं के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के व्यवहार में सर्वदा ईश्वर को साक्षी मानकर चले। देवताओं के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके अतिरिक्त मनुष्य जात के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। सबके प्रति दया का भाव कर्तव्य रूप से विधान किया गया है। इतना ही नहीं, अतिथि सत्कार को महान पुण्य का कर्तव्य माना गया है। इंद्रजाल, जादू विधा, नारी हरण एवं व्यभिचार को पाप कर्म बताकर दूषित ठहराया गया है। जुए को वर्जित बताया गया है। पृष्ठ संख्या 398। धार्मिक गुण ईश्वरीय नियम की अनुकूलता है और इसमें मनुष्य के प्रति प्रेम भी आ जाता है। दुष्कर्म उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। सारांश यह है कि प्रकृतिवादी ईश्वर या देवता के साथ धर्म और नैतिक आचरण का सहसंबंध देखा जा सकता है। ईश्वर पूजा या ईश्वर से प्रार्थना तथा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ से धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रतिपादित होता है। यही धार्मिक क्रियाएं दूसरे रूप में मनुष्य के जीवन को नैतिक आधार प्रदान करती हैं। ईश्वर मनुष्य के नैतिक आचरण को ही स्वीकार करता है। पाप कर्म या ईश्वरीय नियम का उल्लंघन दुष्कर्म माना जाता है। अतः प्रकृतिवादी ईश्वर धर्म और नैतिक आचरण को स्वीकार करता है। अब शीर्षक है प्रकृतिवादी ईश्वर एक समीक्षा। इसमें पहला है, प्रकृतिवादी ईश्वर को विवेचना से धर्म दर्शन के क्षेत्र में अनेक तथ्य आते हैं, जिनका धर्म दर्शन के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में अनेक देवताओं के रूप में अनेक शक्ति की कल्पना की गई। शक्ति की उपासना अपने में ही महत्वपूर्ण है। धर्म में देवता या ईश्वर की शक्ति ही आकर्षण का केंद्र है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि शक्ति ही सृष्टि का आधार है। बिंदु दूसरा है, प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा में यह भी समाहित है कि विश्व में एक व्यवस्था कायम है। यह व्यवस्था बिना किसी प्रशासक या शासक के संभव नहीं। भारत में रित की अवधारणा एक व्यवस्था को ही प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार बेबीलोनिया और चीन में भी विश्व को व्यवस्था पूर्ण माना गया है। यह व्यवस्था प्रकृतिवादी ईश्वर की ही देन है। अब तीसरा है, प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा से धार्मिक आचरण और आध्यात्मिकता का विकास देखा जाता है। यह विकास धर्म और धर्म दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यही वह आधार है जिससे सभ्य मानव जीवन अध्यात्म धर्म और संस्कृति को अपने चिंतन का विषय मानता है। प्रकृतिवादी ईश्वर से जो प्रार्थनाएं की जाती हैं उनको देखकर पता चलता है कि प्रार्थना और कुछ नहीं परम सत्ता के प्रति आंतरिक पुकार है। यह सर्वविदित है कि प्रार्थना धर्म का सर्वस्व है, यही सच्चा धर्म है। प्रकृतिवादी ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थना की विधि और विषय को देखकर पता चलता है कि इसमें विनम्रता, निवेदन, श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना होती है। इसी तरह प्रार्थना के विषय में कहा जा सकता है कि प्रकृतिवादी ईश्वर से की गई प्रार्थना का विषय स्वार्थ या भौतिक वस्तु की प्राप्ति नहीं वरन आध्यात्मिक भूख की तृप्ति है। प्रार्थना केवल प्रार्थना के लिए अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए की जाती है। जगत में ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए की जाती है। बिंदु चौथा है, प्रकृतिवादी ईश्वर में नैतिक गुणों का आरोपण भी मिलता है। जैसे इंद्र में शौर्य, वरुण में न्याय, एथिनो में ज्ञान आदि गुणों का। पांचवा है, प्रकृतिवादी ईश्वर धर्म का विकसित रूप प्रकट करता है। यह बहुदेववाद से चलकर एकेश्वरवाद तथा अंत में सर्वेश्वरवाद में पहुंचता है। छठवां है, प्रकृतिवादी ईश्वर की एक गंभीर आलोचना यह की जाती है कि इसमें मानवीकरण या एंथ्रोपोमर्फिज्म का बाहुल्य है। मनुष्य अपनी इच्छा भावना आदि का आरोपण ईश्वर पर करता है। पृष्ठ संख्या 399। इसके साथ ही यह आलोचना की जाती है कि प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा में व्यक्तिवादी धार्मिक चेतना का विकास नहीं हो सका है। जब तक धर्म व्यक्तिगत रूप से सक्रिय नहीं होता तब तक धर्म का संपुष्ट रूप प्रकट नहीं होता। एक अन्य आलोचना यह भी है कि प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा में ससीम देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धार्मिक चेतना का विकास ससीम ईश्वर से नहीं हो सकता। धार्मिक चेतना का विकास तो असीम ईश्वर की अवधारणा से ही होता है। अंत में यह आक्षेप भी किया जाता है कि प्रकृतिवादी ईश्वर अज्ञेयवाद या एग्नोस्टिसिज्म और भाग्यवाद या फेटालिज्म को प्रश्रय देता है। मनुष्य में ज्ञान की अर्थात जानने की प्रवृत्ति है, किंतु अज्ञेयवाद मानव की इस क्षमता का खंडन करता है। विश्वातीत सत्ता के विषय में मानव बुद्धि की पहुंच संभव नहीं है। प्रकृतिवादी ईश्वर की अवधारणा से इस ओर संकेत मिलता है। यह धर्म की दृष्टि से उचित नहीं है। यदि ऐसा है तो धर्म का सर्वोच्च रूप नहीं आ सकता। भाग्यवाद मानव की स्वतंत्र संकल्प शक्ति का खंडन करता है। यदि पहले से सब कुछ निश्चित है तो मनुष्य कठपुतली के समान हो जाता है। वह नियत के हाथों में पड़कर अपने भाग्य को कोसता रहेगा। प्रगति के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकता। इस दृष्टि से यह निराशावाद को प्रश्रय देता है। प्रकृतिवादी ईश्वर की धारणा में ऐसे देवताओं की कल्पना की गई है जो प्रकृति के ही एक अंग के रूप में हैं और जिनमें बुद्धि विचार या भावना का अभाव है। ऐसी स्थिति में देवता व्यक्तित्व रहित है और व्यक्तित्व रहित ईश्वर धर्म की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के सुख दुख को नहीं सुन सकता। अतः ऐसा देवता मनुष्य की धार्मिक भावना का विकास करने में सहायक नहीं हो सकता। अध्याय 25 समाप्त।